भी मदद की। तो उस वक्त ये हुक्म आया कि जी ये जो अंसार और ये जो महाजिर जो भाई बने हैं, ये ऐसे भाई हैं कि इनमें भी आपस में विरासत तकसीम होगी। तो इस मुबारक आयत के आने पर ये हुक्म मनसूख हो गया कि अवायल हिजरत में ये वो, क्योंकि खास वक्त था, अब वो खास वक्त खत्म हो गया, तो अब एक दूसरे के वो वारिस नहीं रहे, बल्कि ये जो वरासत है ये खानदानों में, फैमिली के अपने अंदर जो है, करीबी रिश्तेदारों में जो होती है, वही अल्लाह का हुक्म है। तो ये दो अहम नुक्ते, दो अहम फिकही मामलात हैं। तो करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह ने वरासत में ज्यादा हकदार करार दिया, और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक रखना ये अहम तरीन चीज है। और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक रखने से मुतालिक तीन बातें आपके सामने रखनी जरूरी है। ये तीनों हदीस हैं और ये तीनों सही अहदीस हैं। और पहली हदीस जो है उसकी रोशनी में पहली बात जो करना जरूरी है वो ये है कि करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म करने की इजाजत ही नहीं शरीयत हमें देता है। हदीस पाक के अल्फाज है कि जिसने करीबी रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ा, अल्लाह ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अल्लाह हू अकबर। तो बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है। आज कई मर्तबा बस जिन रिश्तेदारों को हम पसंद करते हैं हम उनसे तो दोस्ती रखते हैं, और जिन रिश्तेदारों से जो हमारे दिल पे नहीं बैठते हम उनसे वैसी नफरत रखते हैं कि जैसे ये दुनिया के सबसे बुरे तरीन इंसान है। सच्ची बात यह है कि गलतियां, कोताहियां, गुनाह हम में से हर एक के अंदर है। तो लोगों के अंदर गुनाह भी होते हैं, लोगों ही के अंदर नेकियां भी होती हैं। तो हर एक को, या करीबी रिश्तेदारों में से जिनके साथ इंसान का कोई बुरा मामला हो गया, उनको यूं नहीं समझना चाहिए कि ये कायनात का सबसे बुरा शख्स है, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि हत्तुल विसा कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता कायम रहे। कि जो रिश्ते तोड़ते हैं, अल्लाह अकबर। तो हमारे अकाबरीन जुल्म बर्दाश्त कर लेते थे, ज्यादती बर्दाश्त कर लेते थे, मगर रिश्तों को तोड़ा नहीं करते थे। और सच्ची बात यह है कि रिश्तों को नहीं तोड़ा तो इंसान ने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, ये बजाते खुद बहुत बड़ा इनाम है। अगर रिश्ते को तोड़ने से रोकने के लिए कुर्बानी दी जा रही है और उसके बदले में अल्लाह के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, तो ये कोई छोटा डील नहीं है, तो बड़ा फायदेमंद डील है। मगर सच्ची बात तो ये है कि आजकल की तहकीक करने वालों ने भी ये तहकीक की। अमेरिका के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये तहकीक की, और ये 35-36 साल की तहकीक, और ये तबके के हर बंदे से इंटरव्यू लेके ये तहकीक की है। और तहकीक किस चीज पे है कि क्या चीज इंसान को सबसे ज्यादा खुश रखती है। तो उनकी तहकीक के मुताबिक जब उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या चीज इंसान को सबसे ज्यादा खुश रखती है, उसमें बहुत सारी चीजें थी कि उसने पूछा कि जी किसी को माल ज्यादा खुश रखता है, म्यूजिक सुनना खुश रखता है, कोई और उसने उस तरह की बातें की कि ये सारी चीजें, अगर उसके पास अच्छी नौकरी हो तो क्या वो खुश रहता है, उसका घर जो है वो फलां जगह के करीब हो तो खुश रहता है। उसने कहा कि एक चीज जो है वो सबने कही, कि लोगों ने जो उम्रें गुजारी उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खुश वही इंसान जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को जिंदा रखा। तो आज हम वैसे तो यही कहते हैं कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं है, मगर आखिर को जिंदगी में खुश वही रहता है जिसके रिश्तेदार उसके अपने होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अहमकाना चीज होती है कि छोटी छोटी बातों पे इंसान करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ दे। खास तौर पे ये जो ससुराल के साथ मामला होता है, इसमें बहुत जल्दी कई मर्तबा नौजवान बच्चियां करती हैं कि बस एक चीज पसंद नहीं आई तो गुस्सा हो गए। हर एक के अंदर ऐब होते हैं। रिश्तों को तोड़ना ये दर हकीकत अल्लाह के साथ रिश्ता तोड़ना है। और आखिर को इंसान जब अपने सारे रिश्तेदारों से तोड़ के बैठ जाता है तो जिंदगी परेशान कुन गुजरती है। तो रिश्तों को सलामत रखने के लिए कुर्बानी देना ये बहुत बड़ी नेकी है। ये अल्लाह का वली बनने का एक रास्ता है। तो तीन चीजें रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक रखने से मुताल्लिक, और पहली चीज ये कि करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म करने की इजाजत नहीं है। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने करीबी रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ा अल्लाह ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि रिश्ता रखने के लिए रिश्तेदार का आपके साथ अच्छा सलूक करना जरूरी नहीं है। नबी अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया और बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया कि सिला रहमी ये थोड़ी है कि तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तो तब उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। सिला रहमी तो ये है कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, जिसने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया, तुम उसके साथ भी जोड़ो। अल्लाह, तो सिला रहमी करने के लिए दूसरे का अच्छा सलूक करना जरूरी नहीं है। सिला रहमी इंसान इसलिए करता है कि उसने अल्लाह को राजी करना है। पर बस रिश्तेदारों को ना देखें कि जी उन्होंने मेरे साथ ये किया और उन्होंने मेरे साथ वो किया। आज तो अल्लाह अकबर, किसी ने हदिया आपको दिया है तो वो हदिया भी इंसान याद रखता है कि इसने मुझे इतने पैसे दिए थे, तो इनके घर पे जब दावत होगी तो मैं इतने ही लेके जाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि रिश्तेदारों के साथ दिल खुला रखा करो, ज्यादा दिया करो, ज्यादा खुश किया करो उनको। जिसने रिश्तेदारों को खुश कर लिया यूं समझ लिया उसने अल्लाह को खुश कर लिया। और ये बेवकूफी होती है कि इंसान थोड़ी कोई बात पसंद नहीं आई रिश्तेदारों की तो बस हर एक से बैठ के गीबत कर रहे हैं, हर एक में बैठ के सुना रहे हैं कि भाई फलां तो ऐसा ही है, किसी ने कोई कमी कोताही कर दी इज्जत देने में, तोहफे देने में, या उसने कोई अच्छा तोहफा नहीं दिया, तो हर एक से बैठ के बुराइयां शुरू कर देते हैं। ये खवातीन की एक बुरी आदत है, मगर ये भूल रहे होते हैं हम कि अगर हमने किसी के बुरे सलूक पे अच्छा सलूक कर लिया यूं समझ लें कि अल्लाह को राजी कर लिया। और क्यों नहीं हम इस चीज को याद रखते कि जितने गुनाहगार हम अपने रिश्तेदारों को समझते हैं, सच्ची बात यह है कि अगर हम अपने अंदर झांके हम उससे भी ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं, उससे भी ज्यादा कोताही करते हैं। तो इसलिए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना ये हमारे दीन का एक बड़ा हिस्सा है। करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक रखने से मुतालिक एक तीसरी बात भी करना जरूरी है, और वो ये कि जिसने रिश्तेदारों का इकराम किया इस दुनिया की बरकतें समेट गया। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि जो ये चाहता है कि उसका रिस्क बढ़ जाए और जो ये चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। अल्लाह अकबर। ये कई मर्तबा हम ये कहते हैं कि जी बस रिश्तेदार हमारे घर बिल्कुल ना आए, हमें उनको खिलाना ना पड़ जाए, हमें उनको वक्त देना ना पड़ जाए, और आज हमने दरवाजे बंद कर लिए हैं। बल्कि आज अगर कोई रिश्तेदार अचानक हमारे घर आ जाए तो हम बड़े नाराज होते हैं, जी कम से कम कॉल करके आते हैं। ये जो रिश्तेदारों के लिए इंसान ने जो घर बंद कर दिया यूं समझ लें कि रिस्क की वुसत के लिए अपना घर बंद कर दिया। और कई मरतबा हम जाहिरन तो बहुत नेक समझे जाते हैं मगर अंदर ये कोताही मौजूद होती है। दिल तंग होता है करीबी रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी करने के लिए, और ये जो दिल की तंगी है इसको दूर करना, ये इंसान को अल्लाह का बहुत बड़ा मुकर्रब बना देती है। तो करीबी रिश्तेदारों के लिए दिल को खुला करें, करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, करीबी रिश्तेदारों की गलतियों को ज्यादा माफ किया करें, इसी से अल्लाह भी राजी होंगे, इसी से दुनिया की बरकतें मिलेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया रिस्क खूब बढ़ जाएगा, और खास तौर पर रमजान मुबारक में एक दूसरे की जरूर दावत करें। हदीस पाक में आता है जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार करवाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और खाने पिलाने का शौक जरूर दिल में होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को खाना खिलाए। तो कभी अगर घर में अचानक से मेहमान आ जाता है, कभी शौहर, कभी भाई, कभी वालिद घर में जबरदस्ती अगर कोई मेहमान ले आए, तो दिल को तंग ना करें। ये मेहमान अपने साथ रिस्क के वादे लेके आया है, हमारे घर में बरकतें लेके आया है, हमारे घर में आसानियां और आसाइशें लेके आया है। जब वो आता है और आप उनको खाना खिलाते हैं तो उसका फायदा कम है, आपका फायदा ज्यादा है। और नबी अलैहिस्सलाम दूसरों को खाना खिलाने में, दूसरों की मेहमान नवाजी करने में, रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियां करने में बहुत ज्यादा शौक फरमाते थे, और आज ये शौक हमारा खत्म होता जा रहा है। हदीस पाक में ये वाक्य आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वसलाम एक जिहाद में कामयाबी मुसलमानों को हुई, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको कैदी बना के और पकड़ा गया काफिरों को, बहुत सारा माल गनीमत भी आया। कैदियों में से एक औरत थी, उसने कहा, जिन सहाबा इकराम की जिम्मेदारी थी कैदियों को संभालने की, कैद करके उनको रखा हुआ था, एक औरत ने कहा कि तुम्हारे जो नबी हैं उनसे मेरी मुलाकात करवाओ, मैं उनकी करीबी रिश्तेदार हूं। अब वो जो सहाबी थे उन्होंने कहा ये ऐसे ही कह रही है, अल्लाह के नबी के तो कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार कौन होंगे जो कैदी बन के आए होंगे। फिर उसने वापस इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं उनकी करीबी रिश्तेदार हूं, मेरी मुलाकात करवाएं उनसे। तो नबी अलैहि सलातु वसलाम के पास उस औरत को पेश किया गया, और उस औरत ने कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी दूध शरीक बहन हूं, जिस दाई से आपने दूध पिया था हलीमा, मैं हलीमा की बेटी शीमा हूं, आपसे उम्र में भी बड़ी हूं, कभी कभी मेरी वालदा आपको संभालती नहीं तो मैं आपको संभाला करती थी, आप बकरियों के साथ खेलती थी तो मैं आपको उनके साथ खिलाती थी, कभी कभी बकरियां चराने में जाती तो आपको साथ ले जाती कि आपका ख्याल करने वाला कोई नहीं होता, आप उम्र में बहुत छोटे थे। अल्लाह अकबर, ये बात सुनी तो अल्लाह के प्यारे महबूब की आंखों में आंसू आ गए, और आपने अपने सहाबा कराम से फरमाया कि इनको फौरन रिहा किया जाए, इनका कोई माल भी ना लिया जाए, और आपने अपने पास से बहुत सारी बकरियां हदिया की, बहुत सारे तोहफे दिए कि ये तो मेरी दूध शरीक बहन है। और बहुत ही इज्जत के साथ सहाबा कराम को साथ भिजवाया कि जहां ये रहती हैं वहां इनको छोड़ के आया जाए। तो रिश्तेदारों के साथ अल्लाह के प्यारे महबूब का ये मामला, करीबी रिश्तेदारों को दिल से लगाए, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, इसी में अल्लाह की रजा है। इसीलिए फुकहा ने ये फतवा लिखा है, जो रमजान में हम जकात देते हैं इस ज़कात के सबसे पहले हकदार आपके अपने करीबी रिश्तेदार हैं। ठीक है, अपनी औलाद को नहीं दी जा सकती है ज़कात, अपने वालदेन को नहीं दी जा सकती है, मगर इसके अलावा बहन भाई, आपके चचा हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मामू खाला, आपके फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, इन सबको दी जाता। अगर इनमें से कोई गरीब है तो पहला हक इनका है कि आप इनको ज़कात दें। तो रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाए, दिल को तंग न करे, और दूसरों को भी ये पैगाम दे कि असल खुशी दुनिया में रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी निभाने में है। असल रिस्क की फरावानी और बरकतें रिश्तेदारों के साथ अल्लाह ने रख दी है। एक आखिरी बात, एक बड़े मुहद्दिस थे और उनके दर्स में कई मरतबा सैकड़ों हजारों लोग बैठते। शहर उनसे मोहब्बत करता था कि अल्लाह के नबी की हदीस इस तरह सुनाते, लोगों के दिल के ऊपर बड़ा असर होता। मगर कभी कभी आप दर्श देते तो आपकी माँ आ जाती, बूढ़ी माँ, और आकर आपको डांटना शुरू कर देती कि घर गंदा पड़ा है और तू इधर आके क्या शुरू हो गया, जा घर को साफ कर। तो जब वो माँ आती तो आप चले जाते, उठ के उसको भी साथ लेके जाते। दर्स हदीस जिसके अंदर कई मरतबा सैकड़ों हजारों लोग बैठे होते, वो छोड़कर जाके घर की सफाई करते, फिर वापस आते और फिर हदीस के दर्स को जारी करते। तो हर कुछ अरसे बाद वो माँ आ जाती और कभी कभी डंडा लेके आती और डंडे से मारती। अल्लाह अकबर, सारे शागिर्द बैठ के देखते कि हमारे उस्ताद अभी दरसे हदीस देख रहे हैं और एक बूढ़ी औरत आती है जो उनकी माँ है, उनको डंडा मार रही है, और वो डंडा खा भी लेते, फिर बड़े प्यार मोहब्बत से माँ को लेके जाते, फिर घर की सफाई करते, फिर आ जाते। लोगों ने पूछा तो पता चला कि जी माँ जो है वो थोड़ी सी जहनी तौर पे मरीज है। तो हर चंद दिनों बाद इस दरसे हदीस के दरमियान में माँ आ जाती, तो कुछ करीबी साथियों ने हजरत को मशवरा दिया कि हजरत माँ को दरवाजा बंद करके आया करें। तो आपने फरमाया कि दरवाजा बंद करके आऊंगा तो बेचैन होगी, परेशान होगी, नाराज होगी। तो साथियों ने कहा कि हजरत इतने लोग बैठ के दर्श सुन रहे होते हैं आपका, तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर वालदा को बंद कर दिया जाए घर में ताकि दर्श मुकम्मल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कभी कभी आके आपको डंडा भी लगा देती है, तो हमारे लिए तो ये बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल है कि आपको कोई दर्श हदीस के दौरान डंडा मार रहा है। उस वक्त आपने फरमाया कि ये इसका डंडा मारना मुझे बड़ा अजीज है, जिस जिस दिन ये डंडा मार के जाती है उस रात अल्लाह के प्यारे महबूब की ज़ियारत जरूर होती है। अल्लाह, ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, ये भाई बहन हैं, ये वालदेन हैं, इनके साथ जिसने अच्छा सलूक कर लिया, कई मरतबा इनकी ज्यादती भी अगर बर्दाश्त कर ली, उसने वाकई आखिरत भी कमा ली, उसने दुनिया भी कमा ली, उसने अल्लाह को भी राजी कर दिया। अल्लाह ताला ये मुबारक नेमत हमें भी नसीब फरमाए। यहाँ आके आज का सबक मुकम्मल होता है, या जिस एक मरतबा फिर तर्जुमा कर देता है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु, और जो ईमान लाए इसके बाद, वहाजरू वजाहदू माअकुम, और जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने जिहाद की तुम्हारे साथ, फ़उलाइका मिनकुम, वो तुम में से ही हैं, व उलुल अरहामी, और जो तुम्हारे आपस के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, बाज़ुहुम अवला बिबाज़िन, तो वो आपस के रिश्तेदार वो ज्यादा हकदार हैं एक दूसरे के, फी किताबिल्लाह, अल्लाह के हुक्म में। इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह हर चीज के जानने वाले हैं। यहाँ आके आज का सबक मुकम्मल होता है। तालिबात थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर ले, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले। लाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके हाथ झोली है न प्याला है। भिखारी वो जिसे हीर सो हवस ने मार डाला है। तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी जुबूहाली। तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी जुबूहाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। ये आंखें खुश्क है यार रब, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है यार रब, इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदावत साथ लाया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल आलिल वहाब।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مالک، آج کے اس کلاس میں سورہ انفال ہم نے مکمل کی، اللہ جنہوں نے پڑھا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اللہ اس عاجز مسکین نے پڑھایا اللہ اس کے پڑھانے کو قبول فرما. میرے مالک جنہوں نے انتظامات میں مدد کی اللہ ان کی بھی کوششوں کو قبول فرما. اللہ قرآن پاک کی ان مبارک آیتوں کو اللہ ان پر ہمیں عمل نصیب فرما. اللہ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما. میرے مالک اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ اس کی اشاعت کی بھی توفیق نصیب فرما. اور میرے مالک سب سے بڑھ کر اس مبارک کلام سے محبت کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن کا خادم بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنا. میرے مالک جو غلطیاں کوتاہیاں اس کے پڑھنے میں ہوئی، اس کے پڑھانے میں ہوئی، میرے مالک اپنی رحمت سے ان غلطیوں کو معاف فرما. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہماری کمزوری کا تو یہ عالم ہے، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں میرے مالک کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ آج اس مبارک سورت کی مکمل ہونے کی برکت سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ طاعات کی عزت نصیب فرما، اللہ سچے دل سے اپنا بننے کی توفیق نصیب فرما. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اے اللہ اس مبارک مہینے کو، اللہ آج کی اس کلاس کو ہمارے لیے دل کے بدلنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. میرے مالک جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.